हमारा कोई साथी है जो किसी वस्तु में हमसे कम है, उसकी कमी और अपनी बड़ाई देख दिखाकर हर घड़ी प्रसन्न होने का हमें दुर्व्यसन हो गया है। पृष्ठ संख्या 84। इसी बीच उसको भी यह वस्तु प्राप्त हो जाती है और हमें जान पड़ता है कि हमारी स्थिति जो सापेक्ष थी मारी गई। अपने आनंद में इस प्रकार बाधा पड़ते देख हम अपने साथी की उस प्राप्ति से दुखी होते हैं और मन ही मन उस पर कुढ़ते भी हैं। साथी को बहुत दिनों तक तो इसका पता ही नहीं चलता, पीछे पता चलने पर भी वह हमारे इस दुख में कुछ भी सहानुभूति नहीं करता। हमारी कुप्रवृत्ति का कारण बिना अवसर के हर घड़ी बड़ाई का अनुभव व स्थिति की सापेक्षता का सुख भोगने की लत है। किसी स्थिति की वास्तविकता पर मुख्य और सापेक्षिकता पर गौण दृष्टि रखनी चाहिए। सापेक्षिता नजर का खेल है और कुछ नहीं। यदि हमें पेट भर अन्न नहीं मिलता है पर लोग समझते हैं कि हम अपने किसी साथी से अच्छे या धनी हैं, तो लोगों की इस धारणा से हमारा पेट नहीं भर सकता। लोगों की इस धारणा से आनंद होता है कि वह उस आनंद का शतांश भी नहीं है जो वास्तविक स्थिति में प्राप्त वस्तुओं से मिलता है। अतः स्थिति के वास्तविक आनंदों को छोड़ इस छाया रूपी आनंद पर मुख्य रूप से ध्यान रखना प्रमाद और स्थिति की रक्षा का बाधक है। यदि हम वास्तविक दशा की ओर ध्यान रख आवश्यक प्रयत्न न करते रहेंगे तो अपनी संभल भी नहीं कर सकते कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की धारणा का कुछ मूल्य होता है, अर्थात उसे कोई अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। जैसे यदि किसी गांव में मूर्ख और विद्वान दो वैद्य हैं तो लोग दूसरे को अधिक निपुण समझ उसके पास अधिक जाएंगे और उसकी आमदनी अधिक होगी। यदि पहला वैद्य भी परिश्रम करके वैद्यक पढ़ लेगा और लोगों की धारणा हो जाएगी कि यह भी विद्वान है तो दूसरे वैद्य की आमदनी कम हो जाएगी। ऐसी अवस्था में उस दूसरे वैद्य का पहले वैद्य की उन्नति से कुढ़ना शुद्ध ईर्ष्या नहीं, हानि का दुख या झुंझलाहट है। ईर्ष्या निस्वार्थ होनी चाहिए। ईर्ष्या का दुख प्रायः निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा वश नहीं होता। जब हम अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं है तब हम दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं। जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं। किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं जिनसे ईर्ष्या की तुष्टि का साधन सुगम हो जाता है। जैसे यदि किसी आदमी को किसी दूसरे से कुछ लाभ पहुंचने वाला होता है या पहुंचता होता है तो हम उस दूसरे से उसकी कुछ बुराई कर आते हैं और उसे उस लाभ से वंचित कर देते हैं, पर हमारी यह सफलता निरापद नहीं। यदि वंचित व्यक्ति को हमारी कार्यवाही का पता लग गया तो वह क्रुद्ध होकर हमारी हानि करने के लिए हमसे अधिक वेग के साथ यत्न करेगा। हमने तो केवल जरा सा जाकर जवान हिलाने का कष्ट उठाया पर वह हमारी हानि करने के लिए पूरा परिश्रम करेगा। ईर्ष्या में प्रयत्नोत्पादिनी शक्ति बहुत कम होती है। उसमें वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। पृष्ठ संख्या 85। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के हेतु प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक अपने मन में नहीं ला सकते। तभी हम हार कर दूसरे की स्थिति की ओर बार बार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी ही रहने पर भी बुरी नहीं दिखाई देती। अपनी स्थिति को ज्यों का त्यों रख सापेक्षिक द्वारा संतोष लाभ करने का ढीला यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं तो और क्या है। जो वस्तु उज्ज्वल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहाँ तक संतोष कर सकते हैं। जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है उसे न तो नैराश्य होता है और न ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति के मिलान करते रहने की फुर्सत। ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनंतता से लाभ उठाना चाहिए। जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर ईर्ष्या का प्रभाव क्या पड़ता है यह भी देख लेना चाहिए। ईर्ष्या अप्रेष्य मनोविकार है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम भी बदले में ईर्ष्या नहीं करने लगते। दूसरे को ईर्ष्या करते देख हम उसे घृणा करते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोग हम उस पर क्रोध करते हैं जिसमें अधिक अनिष्टकारिणी शक्ति होती है। अतः ईर्ष्या एक ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है। इससे इस बात का आभास मिलता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुंचाया अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुंचाना सामाजिक न्याय नहीं अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है। क्योंकि निरापराध व्यक्ति को अपराधी की स्थिति से अच्छी दिखलाना न्याय का काम है। ईर्ष्या अत्यंत लज्जावती प्रवृत्ति है। वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी मुंह खोलकर नहीं आती। उसके रूप आदि का पूरा परिचय न पाकर भी धारणकर्ता उसकी हरम की बेगामों से अधिक पर्दा करता है। कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने नहीं आती। उसका कोई बाहरी लक्षण धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता। क्रोध में आंखें लाल हों, भय में आकुलता हो, घृणा से नाक भौं सिकुड़े, करुणा में आंसू आए, पर ईर्ष्या में शायद ही कभी असावधानी से ठंडी सांस निकल जाए। ईर्ष्या इतनी कुत्सित वृत्ति है कि सभा समाज में, मंत्रिमंडली में, मित्र मंडली में, परिवार में, एकांत कोठरी में कहीं भी स्वीकार नहीं की जाती। लोग अपना क्रोध स्वीकार करते हैं, भय स्वीकार करते हैं, घृणा स्वीकार करते हैं, लोभ स्वीकार करते हैं, पर ईर्ष्या का नाम कभी मुख पर नहीं लाते। ईर्ष्या से उत्पन्न अपने कार्य को दूसरी मनोवृत्तियों के सिर मरते हैं। यदि हमें ईर्ष्या के कारण किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है तो हम बड़ी गंभीरता और सज्जनता प्रकट करते हुए उसके दोषों और त्रुटियों का निदर्शन करते हैं। बैर ऐसी बुरी प्रवृत्ति तक कभी कभी ईर्ष्या को छिपाने का काम दे जाती है।